Hare Krishna. Atras Kunti Sadhyay Shlok Sankhya 5. Is Adhyatmik Gyan mein pravesh karne se pehle Guru aur Gauranga se Krupa ki yachna karte hue Mangala Charan karenge taki hum jo adhyayan kar rahe hain uska pura pura labh prapt ho sake jo ki hai Krishna Prem ki prapti. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunnilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamahayam Dadati Swapadantikam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudhirayet. Nashtra Prayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktira Bhavati Nashtikim. Aradyo Bhagavan Brajesha Tanayas Tathama Vrindavanam Ramya Kachitupasana Vrajavadu Vargenaya Kalpita. Srimad Bhagavatam Pramanam Amalam Prema Pumartho Maha Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatradaraha Naparaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Kararivinde Napadarivindam Mukharivinde Vinivishayantam Vatasya Patrasya Putri Shayanam Balam Mukundam Manasa Smarami. Shri Krishna Govinda Hare Murari He Nath Nara Yana Vasudeva Jibhe Bibasva Mritumeta Deva Govinda Dhamo Dharamadhaviti Mukam Guru Tu Vachalam Pangu Langhayati Kiram Yat Kripatamaham Vande Shri Gurundi Nataranam. ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की जय हो. आठवां स्कंद जिसका शीर्षक है गजेंद्र की समर्पण स्तुति. अध्याय तीन श्लोक संख्या तीन सॉरी श्लोक संख्या फाइव. अत्यंत ही सुंदर श्लोक है, कृपया मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. गजेंद्र कहते हैं काली न पंच वमितिषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारि भिविराजते विभो कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारेभिविराजते विभो कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरम् यस्तस्य पारे विविराजते विभो। शब्दार्थ, जैसे हमने कल पढ़ा, गजेंद्र ने भगवान को अपनी शक्ति से किस प्रकार वो इस पूरे ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं और फिर प्रलय करा देते हैं और स्वयं साक्षी बनकर उस काल को, समय को साक्षी होकर देखते रहते हैं। उसके विषय में बताया कि अविद्ध दृक् साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्पर, कि मैं उस भगवान के शरण में जाना चाह रहा हूँ जो प्रक्षिक्ष तथा साक्षी दोनों हैं, इस प्रकार वे इस वस्तुओं से परे हैं, ऐसे भगवान मेरी रक्षा करें। तो आज प्रलयकालीन स्थिति के में कि वो किस तरह से, किस प्रकार से जब प्रलय होता है तो वो कैसे देख सकते हैं, क्योंकि प्रलय के समय तो सब कुछ विनष्ट हो रहा होता है, तो भगवान कैसे उसको देखते हैं और पुनः कैसे इस संपूर्ण सृष्टि का सृजन करते हैं, उसके विषय में कहते हैं कालेन पंचत्वमितेषु। मतलब कालेन, मतलब जब काल के द्वारा पंचत्व, पंचत्व का मतलब होता है पंचभूत जो है, जब जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पंचभूत अभी तो जब, क्योंकि इसी के द्वारा ये सब संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं वो बनी है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि सारा काल, पंचत्व मतलब सारी सृष्टि जो है वो विनष्ट हो जाती है, सारी वस्तुएं पंचत्व में मिल जाती हैं। कैसे, जैसे एक शरीर होता है, उसका जब लय होता है तो उसको जलाते हैं तो क्या होता है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, वायु वायु में चली जाती है, जल जल में परिवर्तित हो जाता है और पृथ्वी पृथ्वी में चली जाती है। तो एक समय ऐसा आता है जब महाप्रलय होता है, तब सारा संसार जो होता है कृत्स्नशो, कृत्स्नशो का मतलब है सब कुछ, जितनी भी अभिव्यक्ति है संसार में, इस दृश्य जगत के भीतर की प्रत्येक वस्तु जो है वो सब पंचत्व में समाहित हो जाती है, संसार में जो कुछ भी है उसका विनष्ट हो जाता है। केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, वे कहते हैं लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु, मतलब लोकेषु, इस संसार के सारे मनुष्य, पशु, पक्षी, जीव जंतु का, केवल वो ही नहीं, पालेषु मतलब जो इन वस्तुओं के पालन करता है, जो इनको चलाते हैं, जैसे ब्रह्मा, इंद्र, बड़े बड़े देवी देवता, वो सब भी क्या करते हैं, पंचत्व में लीन हो जाते हैं। त सर्व हेतुषु, हेतुषु का मतलब है कि जो जो वर्कर्स होते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होती हैं, वो सारी, जैसे हम देखते हैं संसार में भी एक घर बनाना होता है हमें, तो उसमें कितने सारी एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, वर्कर्स की आवश्यकता होती है, ये जुटाओ वो जुटाओ, लकड़ी चाहिए, ईंट चाहिए, सीमेंट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वाटर चाहिए, हर चीज चाहिए होती है ना, तो वो हेतु होती है, सारी इंग्रेडिएंट्स और सारे वर्कर्स मिलकर। तो यहाँ पर गजेंद्र कहते हैं सामान्य जीव ही नहीं, लोकेषु पालेषु, जीव व्यक्ति, पालेषु यानी जीवों के पालक, बड़े बड़े लीडर, लोकपाल आदि सब समाप्त हो जाते हैं कालेन पंचत्वमितेषु कृत्स्नशु, जो कुछ संसार में है वो सब विनष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, केवल पंचभूत रह जाते हैं, क्योंकि सारी सृष्टि का लय हो जाता है। और उस समय क्या होता है, तमस्तदासी गहनम गभीरम, सारी जगहों पर गहनम मतलब बहुत ही घनघोर, बहुत अत्यंत ही घना, गभीरम का मतलब होता है बहुत गहरा, बहुत गहरा और घना क्या हो जाता है, तमस हो जाता है। तमस कहते हैं अंधकार को, मतलब केवल अंधकार रह जाता है और कुछ भी नहीं होता है संसार में। वास्तव में डार्कनेस जो है वो इस संसार का वास्तविक स्वभाव है, अंधकार स्वाभाविक स्थिति है इस भौतिक जगत की। वैसे इस भौतिक जगत को प्रकाशित करने के लिए सूर्य की आवश्यकता होती है, या इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, या कोई और दिया कैंडल इत्यादि सब कुछ की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर ये सोर्स ऑफ प्रकाश अगर हटा दिए जाए तो फिर ये संसार तो डार्क ही रहेगा ना, अंधकार। लेकिन फिर अभी क्या होता है, अभी एक जगह पे सूर्य होता है और वहां से जब दूसरी जगह पे चला जाता है तो भी सूर्य का अस्तित्व रहता है ना, कि सूर्य अभी समाप्त नहीं हुआ, गहनम गभीरम नहीं हुआ है, मतलब अंधकार हुआ है लेकिन उस जगह पे सूर्य के सोर्स के कारण जो है वो इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि को हम प्रकाश करके इस संसार में प्रकाशित कर सकते। ऐसा कभी नहीं होता है हमारे जीवन में कि पूरा का पूरा अंधकार हो, संसार के किसी कोने में सूर्य ना हो, चंद्रमा ना हो, तारे ना हो। जैसे अभी हम देखते हैं सूर्य चला जाता है तो चंद्रमा आते हैं, उनके साथ तारे आते हैं, तो प्रकाश का कोई ना कोई सोर्स हमारे साथ रहता है। लेकिन एक दिन ऐसा आता है, एक काल ऐसा आता है जब प्रकाश का सारा सोर्स भी मिट जाता है, सारी सृष्टि में केवल तमस्तदासीत गहनम गभीरम, पूरी सृष्टि में केवल अंधकार रह जाता है। उस समय घोर गंभीर तम छा जाता है, अंधकार छा जाता है, कोई व्यक्ति भी तो नहीं रहता। पहले ही बता दिया, काले न पंचत्वमितेषु कृष्णसु लोकेषु बालेषु च सर्व हेतुषु, जितने भी लोग हैं, जितने भी देवी देवता, वो सब भी तो मर गए ना, वो सब भी पंचत्व में चले गए, तो फिर अंधकार रह गया। अभी कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं बचा कि जिसको बोला जा सके भाई कैंडल जला दो ताकि थोड़ी रोशनी हो जाए, कोई नहीं। तमस्तदासी गहनम गभीरम, एकदम अंधकार। उसके उपरांत गजेंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, यस्तस्य पारे विभिराजते विभु, भले ही संसार के एक एक कोने में अंधकार हो जाए परंतु यह प्रलय केवल इस धरातल पर, इस प्राकृत जगत में, इस भौतिक जगत में ही होती है। भले भौतिक जगत के सारे लोग, सारे ब्रह्मांडों का नाश हो जाए, प्राकृत जगत में ही प्रलय होती है, प्राकृत जगत में ही अंधकार होता है, भगवान के धाम में नहीं होता है। इसलिए वे कहते हैं यतस्य पारे, पारे मतलब इस सब भौतिक जगत से वो बहुत परे हैं, पर व्योम में है। जैसे ये जो भौतिक जगत है वो 50 करोड़ योजन का भौतिक जगत है, उसके ऊपर जाते हैं तो कारण समुद्र है। कारण समुद्र में कारण दक्षाय विष्णु शयन करते हैं और वहां तक ये भौतिक जगत है। ये जो कारण समुद्र में विष्णु भगवान, क्योंकि उन्हीं से ब्रह्मलोक निकलता है और उन्हीं से वस्तुएं सारी निकलती हैं, तो फिर क्या होता है, वहां तक सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन ये गजेंद्र कहते हैं यह तस्य मतलब यह मतलब वो भगवान, तस्य मतलब जो इस अंधकार से परे, पूरा संसार में तो अंधकार है, पूरे सारे लोकों में अंधकार है, परंतु यस्तस्य पारे वो भगवान इस अंधकार से परे अभिविराजते। अभिविराजते का मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो प्रलय होती है वो केवल इस भौतिक जगत में होती है, वैकुंठ जगत में कभी भी प्रलय नहीं होती है, वहां पर कभी भी अंधकार नहीं होता है। तो भगवान वहां पर सदैव अभी विराजते अर्थात अपनी लीलाएं करते रहते हैं और आनंद से रहते हैं विभु, क्योंकि वो परमेश्वर हैं। भगवान के जगत में कभी अंधकार नहीं होता है, वो शाश्वत प्रकाशमय चिन्मय धाम है। भगवान कहते हैं 15.6 में, नतत्भासयति सूर्यो न शशांको न पावकः यत्कत्वान निवर्तन्ते तत्थाम परमं मम नतत्भासयति सूर्यो। मेरे उस स्वयं प्रकाशमान धाम को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। तो कोई पूछेगा तो चंद्रमा करता है। भगवान कहते न शशांको, नहीं चंद्रमा भी नहीं, न पावक अग्नि भी नहीं। ये ऐसा धाम है जो चिन्मयी धाम है। वहां की हर एक वस्तु चिन्मयी है, हर एक वस्तु में प्रकाश है। वहां के वृक्ष प्रकाशमान है, वहां के पत्थर प्रकाशमान है, वहां की दीवार प्रकाशमान है, वहां की हर एक वस्तु प्रकाशमान है। वहां पर इस भौतिक जगत के किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं प्रकाशमय चिन्मयी धाम। जैसे हमारे इस भौतिक जगत में यदि सूर्य ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो या अग्नि ना हो, तो फिर हमारे यहाँ पर जो वस्तुएं हैं, जैसे टेबल प्रकाश नहीं करेगा, धरती से प्रकाश नहीं निकलेगा। भौतिक वस्तुएं चाहे कोई फर्नीचर हो या कुछ हो, उससे तो प्रकाश नहीं निकलेगा, अंधकार ही अंधकार हो जाएगा। हमें सोर्स ऑफ लाइट चाहिए होगा। लेकिन भगवान के धाम में वो स्वयं प्रकाशमान धाम है। और भगवान उस धाम की विशेषता बताते हुए कहते हैं यद कत्वा न निवर्तन्ते। वो ऐसा धाम है जहां पर जाकर वापिस नहीं आया जाता। तद धाम परम मम, वो मेरा अपना, मेरा पर्सनल धाम है। भगवान पर्सनलाइज करके बता रहे हैं अपने से कि वो मेरा धाम होता है। वास्तव में यही शुद्ध ज्ञान है। और आज गजेंद्र बता रहे हैं, कुछ लोग तो मानते ही नहीं है। कुछ बोलेंगे कि कहाँ है वैकुंठ धाम, किसी ने देखा है? कुछ लोग तो चैलेंज करते हैं कि देखा है किसी ने, क्या कोई वहां से आया है? हमने तो कभी नहीं देखा। अरे आपने नहीं देखा तो इसका मतलब है कि वो है ही नहीं। केवल आपके ना देखने से क्या वैकुंठ की सत्ता खत्म हो गई, क्या भगवान की सत्ता खत्म हो गई? यूं तो किसी उल्लू ने आज तक सूर्य नहीं देखा, तो कोई उल्लू कहे कि सूर्य नहीं होता तो क्या सूर्य की सत्ता खत्म हो जाती है? तुम्हारा देखना थोड़ी प्रमाण है। प्रमाण तो शास्त्र में भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं अत्यंत सुंदर रीति से, भगवान ने बताया 8.20 में, परस्तस्मात्तु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्ता सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। परस्तस्मात्तु भावोन्यो, मैं इस भौतिक जगत से ऊपर की एक जगह के विषय में बता रहा हूं तुमको कि इस भौतिक जगत के अतिरिक्त एक अन्य प्रकृति है जो अव्यक्त प्रकृति है। अव्यक्तो अव्यक्ता सनातना, जो शाश्वत है, इस व्यक्त अव्यक्त पदार्थ से बिल्कुल परे है। और वही बात यहाँ पर गजेंद्र बता रहे हैं, यतस्य पारो, ये बहुत परे है, सबसे सनातन है, इटर्नल है, यह परा है, श्रेष्ठ है। और यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, जब संसार के प्रत्येक वस्तु का नाश हो जाता है तब भी न विनश्यति, उसका विनाश नहीं होता है और कभी नाश ना होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है, वह एक अन्य दिव्य प्रकृति है। तो मान लीजिए अर्जुन पूछे कि वो स्थान कहाँ है, कौन सा है जहाँ पर कभी प्रलय नहीं होती है, तो भगवान उसको और भी क्लियर करके बता रहे हैं, अव्यक्तोक्षर इत्युक्त तमाहु परमां गतिम। देखो, जिसे वेदांति अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, अव्यक्तो अक्षर इत्युक्त वो बताते हैं, जो वेदांति होते हैं, जो वास्तव में ज्ञानी होते हैं, वो बताते हैं कि वो अप्रकट धाम है जो परमां गति है, जो परम गति है। वहीं पर इस जीव का वास्तविक लक्ष्य है, जीव को वहीं पर पहुंचना है। तो मानो अर्जुन तो अब कंफ्यूज हो गया, पता नहीं कौन सा ये लोक होगा जिसके विषय में भगवान बता रहे हैं। मतलब
ये कौन सा होगा? तो भगवान ऐसे अर्जुन को सोचते रहने के लिए नहीं छोड़ देते कि हाँ सोचते रहो कि कौन सा है, नहीं, भगवान साफ साफ बताते हैं यम प्राप्य नानिवर्तन्ते तद धाम परम मम, वो मेरा धाम है, मेरा घर है जो अव्यक्त है, जो सनातन है। तद न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावका, वहां पर सूर्य चंद्रमा और अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। और यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत सुन विनश्यते, जब संसार की प्रत्येक वस्तु का विनाश हो जाता है तब भी मेरा धाम विनष्ट नहीं होता है, वो मेरा धाम है। और उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? यम प्राप्य न निवर्तन्ते, वहां पर पहुंचने के बाद तुम्हें कभी भी दोबारा इस भौतिक जगत में आना नहीं पड़ेगा। वही परमाम गति, वही वास्तविक गति है जीव की। उस वास्तविक गति की ओर बढ़ने के लिए ही जीव को अभ्यास करना चाहिए। इस संसार में आकर जीव वही भौतिक कार्य करे, आहार निद्रा भय मैथुन, उसके लिए मनुष्य जीवन नहीं मिला है। नारद मुनि बताते हैं श्रीमद् भागवतम 1.5.18
में तल्लभ्यते दुःखवदन्यतः सुखम् कालेन सर्वत्र गभीररं हसा।
कि ये जो मनुष्य यस्यैव हेतु प्रियतेव कोविदु, वास्तव में यदि कोई ज्ञानी है तो उस गंतव्य को प्राप्त करने के लिए, उस परम गति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, न लभ्यते यद भ्रमता उपर्यदा, जो इस भौतिक जगत में ऊपर से लेकर नीचे तक किसी लोक में प्राप्त नहीं होता है। तल लभ्यते दुख वदन यत सुखम, बाकी जो भौतिक वस्तुएं जो तुम्हारे भाग्य में है वो तो तुम्हें मिलेंगी ही। क्या दुख के लिए कभी किसी ने प्रयत्न किया है? आज तक कभी किसी ने सोचा कि मुझे बुखार हो जाए, मेरी तबीयत खराब हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा नुकसान हो जाए? नहीं सोचा, फिर भी दुख मिलता है तो तुम्हारे से का सुख कहाँ जाएगा? उसके लिए भी प्रयत्न करने के लिए मनुष्य जन्म नहीं है, परंतु ये मनुष्य जन्म तो उस दिव्य स्थिति को, दिव्य जगत को प्राप्त करने के लिए है जो कि बहुत कठिनता से मिलता है। और वो ऐसी जगह है जहां पर पहुंचने के बाद पुनः इस संसार में आना नहीं पड़ता है। तो ये कितना शुद्ध ज्ञान है वास्तव में, ये गजेंद्र कितना सुंदर ज्ञान बता रहा है कि जब पूरी सृष्टि घन अंधकार में डूब जाती है, कोई भी प्रकाश नहीं रह जाता है, उस समय वो भगवान अपने परम धाम में, परम व्योह में आनंद से लीला कर रहे होते हैं और वे अपने परिकरों के साथ आनंद में रहते हैं। वहां पर कोई अंधकार नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वहां पर एकदम आनंदमय चिन्मय भगवान का धाम है। तो आज गजेंद्र भगवान से वही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ऐसे भगवान से संरक्षण की प्रार्थना, ये वही वहीं पर जाएगा क्योंकि साथ में जा रहा है ना, तो वही कि मैं ऐसे भगवान से संरक्षण की प्रार्थना करता हूँ, उनकी शरण में आया हूँ। अनुवाद देखिए, गजेंद्र कह रहे हैं काल क्रम से जब लोकों तथा उनके निदेशकों एवं पालकों समेत ब्रह्मांड के सारे कार्य कारणों का संहार हो जाता है तो घन अंधकार की स्थिति आती है, किंतु इस अंधकार के ऊपर भगवान रहता है, मैं उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक मंत्रों से हमें पता चलता है कि भगवान सबों के ऊपर है, वे ब्रह्मा तथा शिव समेत समस्त देवताओं के ऊपर सर्वश्रेष्ठ हैं, वे परम नियंता हैं। जब उनकी शक्ति से हर वस्तु अदृश्य हो जाती है तो विराट जगत में घना अंधकार छाता है, किंतु भगवान सूर्य प्रकाश हैं, जैसे कि वैदिक मंत्रों में पुष्टि हुई है। आदित्य वरुणं तमसः परस्तात् हमारा दैनिक अनुभव है कि जब हम इस धरती पर रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में कहीं न कहीं इस धरती पर रात्रि के अंधकार में होते हैं तो सूर्य आकाश में कहीं न कहीं सदैव चमकता रहता है। इसी प्रकार भगवान परम सूर्य की भांति सदैव चमकते रहते हैं। तब भी जब काल क्रम से समग्र विराट जगत विनष्ट हो जाता है, तो आज गजेंद्र भगवान को बता रहे हैं कि जब पूरी संसार का लय हो जाता है, संसार की हर एक वस्तु नष्ट हो जाती है, पूरे सारे ब्रह्मांडों में केवल अंधकार ही अंधकार, सारे ब्रह्मांड ही विनष्ट हो जाते हैं और पूरी भौतिक प्रकृति में केवल अंधकार रहता है, तब भी जो भगवान अपने परिकरों के साथ इस डार्कनेस से परे परम उज्जवल अपने लोक में अभी विराजते लीला करते रहते हैं, अपने परिकरों के साथ आनंद में रहते हैं, मैं उन विभु उन महान भगवान की शरण लेता हूँ। एक बार शुरू से फिर मेरे साथ पढ़िए। श्री बादरायण उवाच एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यं प्राक्जन्मन्यनुशिक्षितम्। श्रीगजेन्द्र उवाच ॐ नमो भगवते तस्मै यत्त एतच्चिदात्मकम् पुरुषायादिबीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परः प्रपद्ये स्वयं तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वच तत्तिरोहितं अविद्धदृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलो वतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्स्नशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे भिविराजते विभु। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।